इसके बाद असल में इंसान के इस दुनिया में आने के सफर को शुरू किया जा रहा है। वलकत मक्कन ना कुम फिल अर्दी वजाल ना लकुम फी हमाइश, हमने तुम्हें जमीन में इख्तियारात के साथ बसाया, तुम्हारे लिए यहाँ सामान अजीज फराहम किया गया, मगर तुम लोग कम ही शुक्र गुजार होते हो। देखिए अल्लाह के प्यार को महसूस कीजिए। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा, पता चला दुनिया में इंसान तो आ गए, ओहो फरिश्तो ऑक्सीजन तो डाली कोई नहीं, ओहो इसको तो खांसी लग रही है, इसका तो सांस उखड़ रहा है, जल्दी से ऑक्सीजन का इंतजाम करो। इंसान को प्यास लगती है और अल्लाह के फरिश्ते कहते अल्लाह पानी पानी, ओहो सॉरी सॉरी कुछ तो है ही नहीं, फटाफट पानी का इंतजाम करो। ऐसा तो नहीं हुआ, एक बहुत कदरदान शौहर की तरह जो दुल्हन के आने से पहले घर को सजा के रखता है, हर वो चीज जरूरत की उसके घर में रखता है, या वो मेजबान जो बड़े प्यार से आपका इंतजार कर रहा था वो आपके आने से पहले छोटी मोटी चीजें आपकी रख के बैठता है, इस तरह मेरे और आपके इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह सुबहाना ताला ने हर चीज का इंतजाम किया। कोई ऐसी चीज हुई जो हम सोचे और हमें ना मिले, हमें उसकी तलब हुई और वो दुनिया में ना, लेकिन कलील अम्मा तश्करु, क्या पता चला बहुत थोड़े हैं जो इन नेमतों का फिर भी इकरार करते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं। वलकद खलकनाकुम सुम्म सव्वरनाकुम, हमने तुम्हारी तखलीक की इब्तदा की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, इस हुक्म पर सबने सजदा किया मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। इधर दो लफ्ज नोट कर लीजिए, खलकनाकुम और सव्वरनाकुम, इंसान की तखलीक के ये दो ही मराकिल थे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहाना ताला ने तखलीक किया, मट्टी से गूंदा, खमीर पैदा हो गया, जब उसमें जर्म्स पैदा हो गए तो इंसान को शक्ल दे दी गई। अब वो मट्टी सूख गई तो उसके बाद सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर सूरतें बनाई तुम्हारी। फिर आगे हम और जगह जाके कुछ और भी पढ़ेंगे, तो पहली बात तो देखिए कि मेरी और आपकी सूरत अल्लाह की बनाई हुई है। लोगों की शक्लों को डिस्कस ना करें और अपनी को तो बिल्कुल भी ना करें। हमें दुनिया में हर शख्स अपने से हसीन दिखता है और हम दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप को बुरा कहते हैं। और आज आप देखिए कि ये ब्यूटी कॉन्शियस होना कल्चर बन गया है। घंटों के एतबार से लोग बैठते हैं कि एक जगह पे, मैं एक जगह से गुजर रही थी इन्हीं दिनों की कई बातें, पता नहीं किस मुल्क में थे, तो वहां लिखा हुआ था नाहनों का ब्यूटी पार्लर, हाथों का, और अंदर नजर पड़ी तो औरतें पूरी भरी हुई थी और कोई नाखून घुसेट रही है, कोई वो मैनीक्योर कहते हैं गालिबन, यानी वो सिर्फ हैंड ब्यूटी पार्लर था। इसी तरह आप थोड़ा आगे जाएं तो हेयर ब्यूटी, वहां बालों को सजा रहे हैं। आगे आप चले जाएं स्किन ब्यूटी, आप और आगे चले जाएं बॉडी फिजिक, फिर आपकी थेरेपी हो रही है। क्या इस बुत को पूजना? हदीस में आते इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, लोगो अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वला की और तुम्हारे मालों को भी नहीं देखता, वो तो देखता है तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों को। भी सवाल पैदा होता है कि अल्लाह क्यों हमारी सूरतों और हमारे माल से इंप्रेस नहीं होता, वो तो उसने दिया, फिर अल्लाह हमारे आमाल और हमारे दिल को क्यों देखता है, इसको तो हमने खुद से जाना है। तो आज इस कल्चर को खत्म करना है, खास तौर पे उम्मत वसत को। आज उम्मत वसत में भी वही जरासीम आने लगे जो दूसरों के अंदर आ गए, कि बस दफा लोग अपनी जिंदगी का मकसद ही ये समझते हैं। और वही बात है कि मूसा तू और तेरा रब जाए वो करे अल्लाह के काम, हमें तो अभी बैठ के बहुत सारे काम कराने, अभी पैडी की और अभी मैनी की। और देखिए अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी ने एक शख्स को देखा तो बाल बिखरे हुए थे, तो कहा क्या तेरे पास कंघी नहीं थी तो कंघी कर लेता। एक शख्स को देखा उसका लिबास चिचड़ा मुचड़ा था, आपने कहा कि इसके पास कोई ढंग का लिबास नहीं था। खुद अल्लाह के नबी इतने क्लीन, इतने सफाई पसंद थे कि जब सफर में होते तो आपके साथ अपनी ब्यूटी किट होती थी जिसमें आपका जरूरत की चंद चीजें होती थी। मुसलमान होना बेढंगा होना तो नहीं है कि आप कपड़ा कोई और पहन ले, रंग किसी और का पहन ले, आप ऐसे रंग बिरंगे फिरे लोग के यहाँ बड़े नए कहना बेचारे हैं, इनको होश ही नहीं है, ये गलत सब्र है। लेकिन इन चीजों को मकसद नहीं बनाना, इन चीजों के पीछे पड़कर खुद को गुड़ियाओं से तशबीह देना, अफसोस की बात है कि आज हमारी बच्चियां खुद को डॉल्स के साथ रिलेट करती हैं और जब उस जैसी अपने आप को पाती नहीं डिप्रेशन में चली जाती। और किसी ने कहा कि अगर बारबी रियल में एक लड़की होती तो 6.5-7 फुट की होती, जो उसका फिगर दिखाते हैं वो इतने छोटे जिस्म में तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आप मैं नहीं, याद रखिए घर बारबी से नहीं चलते, गुड़ियों से घर नहीं चलते। कितनी भी हसीन बच्ची आप अपने बेटे के लिए ले आए, अगर वो अच्छे काम नहीं करेगी, खिदमत गुजार नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। बस अल्लाह ने दिया कर लीजिए, ठीक है। हाँ आप अपनी बेटियों को पार्लर में बिठाकर उनको एक एक पोर को खुलाने की बजाय खिदमत के तरीके सिखाए, शक्ल अच्छी होगी, चंद दिन अच्छी लगेगी, लेकिन काम अच्छे होंगे तो हमेशा अच्छी लगेगी। और जो चीजें हमने अल्लाह को पेश करनी है उसको सजाने की जरूरत है। शक्लों को, बच्चे की शक्ल पैदा होता है तो उस पर कशिश शुरू हो जाती, वो किसी की बात, उन्होंने कहा बच्चा खूबसूरत हो तो लोग कहते हैं आपका बच्चा बड़ा हसीन है, और अगर बच्चा जरा बेचारा दबे हुए रंग का और दबी हुई शक्ल का, कहते हैं बहुत एक्टिव लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है। तो जब कोई कह दे कि एक्टिव लग रहा है, तो इसको मतलब ये है कि वो लोगों की नजर में खूबसूरत नहीं है। देखिए, खिदमत जीती है। आपके किचन के काउंटर पे बहुत हसीनो जमील किस्म का एक ब्लेंडर रखा हुआ है, बड़ी पतली कमर भी है उसकी और वो लंबा भी है और हसीन भी है, लेकिन आप उसमें जब दूध और आम डाल के शेक बनाना चाहें तो वो चलता ही नहीं है। कितने दिन आप उसको रखेंगे? और बिलाल कैसे थे? काले रंग के हबशी, छोटी आंखें, घुंघराले बाल, मुस्कुराते थे तो सफेद दांत दिखते थे, लेकिन अल्लाह ने उसको काबे की छत पे खड़े होकर अजान देने का ऑनर दे दिया। हजरत सलमान फारसी फारस से आए हुए थे। तो लिहाजा इन चीजों को पीछे कीजिए, एक खास हद तक अच्छा है, वंस अ वाइल इट्स फाइन, लेकिन इसको गोल ना बनाए क्योंकि ये अल्लाह का फैसला, और कभी किसी की शक्ल को डिस्कस ना करें। एक आखिरी बात कह दूं, जब आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने जाए तो खुदा के लिए घर आके उस लड़की का पोस्टमार्टम ना करें। गाय भैंस की तरह लोग आके डिस्कस करते हैं, मोटी थी, पतली थी, लंबी थी, आपको नहीं करना, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, लेकिन शक्लों को डिस्कस ना करें। सुम्मा कुलना लिल मलाइकत इस्जुदू, देखिए अल्लाह आदम को पैदा करके उसको साथ ही इज्जत दिलवा रहे हैं, फिर हमने कहा कि सजदा करो, सबने कर लिया, इबलीस ने ना किया। अब यहां से जरा कन्वर्सेशन देखिएगा और इसी से आपको ट्रिक्स ऑफ शैतान दिखेंगे। आदम और इबलीस को अल्लाह ताला ने दो डिफरेंट किरदार बनाकर ये सामने किया। आदम वो रियल इंस ह्यूमन है जो अल्लाह को मतलूब है, और इबलीस इस वक्त एक सिंबल है इस चीज का कि जो लोग नफ्स के धोखों में आकर दुनिया में अपनी मर्जी से गलत काम करते हैं वो फिर शैतानी रवैयों का शिकार हो जाते हैं। जब इबलीस ने सजदे से इनकार किया, काला मा मनक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, पूछा तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था, बोला मैं इससे बेहतर हूं। इसको वन लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए जो चाहे, अना खैरुम मिन्हु, सबसे बड़ी अना ईगो शैतान, उसने सबसे पहले ईगोइस्टिक, वो ईगोइस्टिक हुआ था, मैं बेहतर हूं, आई एम बेटर देन हिम। कैसे? फिर आगे देखिए, खलकतनी मिन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया, वह खलकता हूं मिन तीन, और इसको तूने मट्टी से पैदा किया। ये सेकंड इसका उजर है, रीजनिंग सिखाता है, लॉजिक्स पेश करता है, जस्टिफाई करता है, यानी शर्मिंदा होने की बजाय अपनी बेहतरी की वजूहात बता रहा है, यानी अपनी जुबान में कह लें कि आगे से जुबान चलाता है। قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين, उसने तो बड़ा बनना चाहा लेकिन अल्लाह ताला ने आवाज लगा दी, फरमाया अच्छा तू यहां से नीचे उतर, तुझे हक नहीं कि यहां बुराई का घमंड करे, निकल जा के दर हकीकत तो इन लोगों में से है जो खुद अपनी जिल्लत चाहते हैं। क्या पता चला, जो जितना बड़ा बनता है ना वो उतना छोटा होता है। देखिए, जो शख्स मुतकब्बिर है, इस पे हमने एक पूरी वर्कशॉप भी की थी, और जो 2010 का दौरा कुरान था उसमें हर पारे के साथ एक थीम था, तो तकब्बुर के थीम में मुझे एक मिसाल याद आ गई कि मुतकब्बिर शख्स की मिसाल कैसी है कि वो पहाड़ पे खड़ा हुआ एक शख्स है। इमेजिन कीजिए, आप यहाँ खड़े हैं, सामने थोड़ी सी दूर एक पहाड़ी और उस पर एक शख्स खड़ा है। अब वो पहाड़ पे खड़ा शख्स आपसे कद में लंबा है ना, लेकिन आपको साफ पता है कि वो आपसे लंबा क्यों है, क्योंकि वो पहाड़ पे खड़ा है। लेकिन जो पहाड़ पे खड़ा शख्स है उसको नीचे देखेगा तो लोग छोटे लगेंगे, समझे? तो क्या कहेगा, मैं बहुत बड़ा, ना खैर मैं बड़ा हूं, ये छोटे हैं। कोई खुश तो नहीं हो रहा उससे, लोगों से वो दूर हो गया और वो सोच रहा है कि लोग मुझे बहुत बड़ा समझ रहे हैं। तो तकब्बुर, बड़ाई का एहसास, मेरे जैसा कोई ना लगे, मेरे जैसा लिबास किसी ना, नहीं मैं जो कर लूं वो कोई ना करे, और हर वक्त इन्हीं दौड़ों धूप में पड़े रहना, अफसोस की बात है आज ये बड़ाई का एहसास मर्दों से ज्यादा औरतों में। महफिलों में देखिए, शादी हालों में देखिए, ब्रांडेड कपड़ों में देखिए, शादी के मौके पे जेवरात में देखिए, आखिरी वक्त तक छुपाते हैं कि कहीं किसी को मेरे जैसा ना बना ले। कपड़े की कीमत 4 गुना बढ़ जाती है उन जोड़ों की जिनको वो रजिस्टर करवा लेते हैं, क्या पैसा जोड़ा औरत नहीं बनाएंगे। और बड़े प्यार से सज संवर के 2-3 घंटे के जिहाद से तैयार होके शादी हॉल में आए और आके देखा बिल्कुल वैसा ही जोड़ा किसी और ने पहना है, वहीं डिप्रेशन में चले गए, मूड ही खराब हो गया। साल से तैयारियां थी जिस शादी को अटेंड करने की, वो दुख की नजर हो गया, कोई मेरे जैसा क्यों लगा। ये तकब्बुर है, बतर अल हक की बगिनती नास, अपने लिए करें, आप अपनी नजर में बड़े बने, अल्लाह के लिए करें, अपने घर वालों के लिए करें, जब आप बड़ाई के लिए करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं तू वाकई उन लोगों में से जो खुद अपनी जिल्लत चाहते हैं। अच्छा बोला मुझे उस दिन तक मोहलत है जबकि सब दूसरे उठाए जाएंगे। ये भी नोट कीजिए रवैया, ये भी शैतानी रवैया है, गुनाहों की मोहलत मांगता है। कहता है आई वॉन्ट टू डू मोर सिंस, अभी तो मेरी लिस्ट बड़ी छोटी है, अभी प्ले लिस्ट में तो अभी और बहुत कुछ डालना है। कहने लगा अल्लाह मुझे और दे, बजाय इसके कहता अल्लाह ऐसे गुनाहों की जिंदगी से मौत दे दे। चाहता तो हिदायत मांगता लेकिन उसने ढील मांगी। आज भी बहुत सारे लोग हैं वो कहते गाइडेंस तो मिले, ओ गॉड गिव मी गाइडेंस बट नॉट सून, अभी ना देना, काफी साल 50-60 साल की उम्र के बाद देना ताकि जरा खूब मौज मस्ती करूं। ये भी शैतानी रवैया है। कहा अच्छा ठीक है, काल इन्ना का मिनल मुंजरीन, फरमाया ठीक है तुझे मोहलत है। देख रहे अल्लाह ताला शाही फरमान की तरह ओके ओके करते जा रहे हैं, अल्लाह को कोई खौफ नहीं कि इसकी बातें सुन ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद काल अफ अभी माँ वही तनी लाखन सिरात कल मुस्तकीम, अब अगला इसका ट्रिप देखिएगा, अगला ट्रिक इसका। बोला अच्छा जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुबतला किया, अपने भटकने का जिम्मा अल्लाह को देता है। आज भी कुछ लोग बदबख्ती के साथ ये कहते हैं अल्लाह ने नहीं चाहा हम नेक हों तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा कर दिया ऐसे घर में, अल्लाह ने हमें बेस्ट में क्यों पैदा किया, अल्लाह हमें किसी मौलवी के घर पैदा करता। तो अपनी नाफरमानियों को अल्लाह के नाम पर डालना ये शैतानी रवैया है। फिर उससे अगला चैलेंज, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर इन इंसानों की खात में लगा रहूंगा, आगे और पीछे दाएं और बाएं हर तरफ से इनको घेरूंगा और तू इनमें से अक्सर को शुक्र गुजार ना पाएगा। देखिए इब्लीस कितना जानता है हमें, उसने इन सारी बातों को पर्सनल ले लिया। देखिए मामला तो इब्लीस का और अल्लाह का था ना, उसने अल्लाह के हुक्म को इन पीछे किया, वो बीच में आदम को ले आया। ये भी आज इब्लीसी रवैया है, कुछ लोग अपनी महरूमियों की वजह दूसरे इंसानों को बनाते हैं और बजाय इसके कि माफी मांगता अब चैलेंज दे रहा है कि मैं इनको बहकाऊंगा आगे पीछे। अब देखिए चारों तरफ से मुराद क्या, दाएं और बाएं क्या, दायां क्या है नेकियों को मुश्किल कर दूंगा इनके लिए, राइट लेफ्ट साइड से आऊंगा गुनाहों को खूबसूरत कर दूंगा, आगे से के इस दुनिया को इनके सामने बड़ा करके दिखाऊंगा, प्रायोरिटाइज करेंगे, पीछे के इतनी बड़ी आखिरत को पीछे डाल देंगे, पसे पुश डाल देंगे। और आज अब देखिए दो डायरेक्शंस भूल गया, ऊपर और नीचे, और इन दो से रब मिलता है। वस्जुद वक्तरिब, जब आप अल्लाह के आगे झुकते हैं या आप अल्लाह पे नजरें लगाते हैं तो शैतान से बच जाते हैं। अल्लाह ताला को इनकी इन बातों पे इतना गुस्सा आया, फरमाया निकल जा यहां से जलील होकर ठुकराया हुआ होकर, यकीन रख इनमें से जो भी तेरी पैरवी करेंगे तुझ समेत इन सब को जहन्नुम से भर दूंगा। अब आप जरा यह नोट कीजिए, इब्लीस ने क्या किया, एक हुक्म को ना माना, अल्लाह ने क्या कहा जहन्नुम में डाल दूंगा। जब इब्लीस एक नाफरमानी से जहन्नुम में जा सकता है, जन्नत से निकाला जाएगा, तो आज हम बहुत सारी नाफरमानियों के साथ उसी जन्नत में जाएंगे। उसको तो एक गुना डबो गया, एक नाफरमानी डबो गई, एक सजदे का इनकार डबो गया, क्या मैं और आप सैकड़ों सजदों के इनकार के बावजूद जन्नत में जाएंगे। यहां 3 सेकंड तक हम सब गौर फिक्र करें, अगर अल्लाह का कानून वही है, अगर अल्लाह की जन्नत वही है और अल्लाह की जहन्नम वही है, तो फिर मुझे भी अपने हर गुना को ये सोच के छोड़ना है कि शायद यही वो गुना हो जो मेरे जन्नत से निकाले जाने का सबब बने। और रिवायत में आता है कि इसने दुनिया में बहुत इबादत की हुई थी, जमीन पर सजदों के निशान थे इसके, ये इबादत गुजार था, फरिश्तों में जा बैठा अपनी कसरत इबादत से, लेकिन एक सजदे का इनकार। अल्लाह जहां बहुत जल्दी खुश होता है ना, याद रखिए अल्लाह सुब्हान तआला नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं। कभी किसी गुनाह को ये ना कह के करे ये क्या फर्क पड़ता है इतना छोटा गुनाह है, नहीं गुनाह तो छोटा हो सकता है, जात बहुत बड़ी है जिसकी आप नाफरमानी करेंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने उनको निकाला, जहां तक कल वो था अब वहां आदम को दाखिल किया जा रहा है। ये ऑनर है मुझे और आपको दी जा रही है।